الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صاد کی پہلی آیت سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا حرف ہے وہ صاد ہے اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صاد ہے۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جن کو بتا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ صاد نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے ذکر سے ابتدا ہے کہ ذکر والے یعنی نصیحت والے قرآن کی قسم، کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی دلیل کی بنیاد پر یا کسی معقول سبب سے قرآن کا انکار نہیں کر رہے بلکہ صرف تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے۔ تکبر یہ ہے کہ ہماری قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو مالی اعتبار سے بہت مستحکم، نہ خاندانی اعتبار سے سب پر فائق ہیں، نہ یہ کوئی بادشاہ ہیں، نہ ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، اس کے باوجود ان کو نبی کیسے بنا دیا گیا؟ تو بس ان کا یہ تکبر کہ ہماری قوم کے ایک درمیانے آدمی کو کیسے رسول بنا دیا گیا، ہماری عقلیں اسے تسلیم نہیں کرتی، یہ ان کا تکبر، اور اسی وجہ سے وہ صرف مخالفت پر اترے ہوئے ہیں کہ سامنے سے خواہ جتنی ہی معقول اور جتنی ہی سمجھ والی اور جتنی ہی اچھی بات ان کے سامنے پیش کر دی جائے، انہوں نے بہر صورت صرف مخالفت ہی کرنی ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں تو وہ پکارنے لگے حالانکہ بھاگنے کا وقت نہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اہل مکہ ہیں جو ایمان قبول نہیں کر رہے، ان کی نصیحت کے لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ پہلے کتنی قومیں گزر چکی، طاقت والی، قوت والی، مال والی، خوشحالی والی، شہرت والی، جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جب ان پر عذاب آیا فنادوا تو وہ پکارنے لگے، تو وہ مدد کے لیے پکارنے لگے، عذاب سے بچنے کے لیے پکارنے لگے، ولا تحین مناص، لیکن پھر اس وقت بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ جب خدا کا عذاب اتر آتا ہے تو پھر اس کے بعد بچنے کی صورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بیان کر کے ان اہل مکہ کو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ دو باتیں ارشاد ہوتا ہے، ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اور دوسری قرآن کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان اہل مکہ یعنی مکے کے کافروں نے کیا کہا اور قرآن کے بارے میں کیا کہا اور توحید کے بارے میں کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا بیان کیا۔ ارشاد ہوا اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا، اہل مکہ کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا، बेशक ये जरूर बड़ी अजीब बात है। यहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से जो काफिरों का रवैया था वो बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐलान नबूवत का हुक्म दिया तो बजाय इसके कि अहले मक्का इस पर खुश होते कि अल्लाह ताला ने इस कौम को ये शरफ अता फरमाया और इस सरजमीन को ये शरफ अता फरमाया कि यहाँ के एक फ़र्द को अल्लाह ताला ने इतना अजीम रुतबा अता फरमाया है, अल्लाह ताला ने इतने अजीम मनसब पर फाइज फरमाया है, उसे तबलीग रिसालत का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने इस कौम को अपना एक मुंतखब चुना हुआ रसूल अता फरमाया है, बजाय इस पर खुश होने के उन्होंने कहा कि ये हमारी कौम में ये कैसे रसूल बन गया, ये तो ना पैसे के तबार से हमसे बढ़कर है, खुशहाली में हमसे बढ़कर नहीं है, ये कोई हमारे किसी कबीले का सरदार नहीं है, तो इसे रसूल कैसे बना दिया गया। तो अब पहले तो इन्होंने रिसालत का ही इनकार कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बातों की तासीर जब लोगों पर जाहिर होना शुरू हुई और आपने खुदाए वाहिद यानी एक ही खुदा है इसकी बात की, मरने के बाद लोग उठाए जाएंगे इसकी बात की, तो इस पर कहा हादा साहिरुन कज्जाब, ये तो जादूगर है, माअदल्ला बहुत झूठा है। जादूगर यूं है कि जिस तरह जादूगर की बातें असर करती हैं इस तरह इसकी बातें असर करती हैं, या जिस तरह जादूगर रंग बिरंगी चीजें दिखा देता है, अकलों को हैरान कर देने वाली चीजें दिखाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को देखकर बजाय रसूल मानने के जादूगर करार दे दिया। हालांकि जादूगर के कर्तव्यों में और उसके करिश्मों में और नबी के मोजज़ों में बड़ा फर्क होता है। जादूगर फासिक फाजिर गलीज और परले दर्जे का गुनाहगार होता है, जबकि अल्लाह का नबी अपने किरदार के एतबार से कायनात के बेहतरीन अफराद में से होता है। तो कहाँ एक फासिक फाजिर और एक खबीस आदात वाले शख्स को अल्लाह के पैगंबरों की तरह मंसूब कर देना और उन्हें यह कहना कि माअदल्लाह ये जादूगर है, और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं उनके एतबार से कहा कज़्ज़ाब है, माअदल्लाह ये झूठे हैं। अच्छा, दूसरी किस बात पर उनका ताज्जुब था वो क्या था कि उन्होंने कहा कि क्या इस नबी ने बहुत सारे खुदाओं को एक खुदा कर दिया। खुदा कर दिया से मुराद के इसने सिर्फ एक ही खुदा मान लिया कि एक ही खुदा सारे काम कर रहा है, हालांकि बारिश का जुदा तो तबाही का जुदा, फतह का जुदा, यानी काफिरों को तो ये हाल होते हैं ना कि 50 किस्म के खुदा मान के बैठे होते हैं। जो मान लो दौलत का खुदा है या देवी है वो जुदा होती है, फतो नुसरत के लिए जुदा मान के बैठे होते हैं, शिकस्त के लिए जुदा मान के बैठे होते हैं, बारिश के लिए किसी और को मानते हैं, सूरज देवता जुदा होता है और रंग बिरंगे खुदा जो है वो अलग बनाए होते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद का बयान किया वो तो ये है कि भाई अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, सारी की सारी कायनात का निज़ाम खुदाए वाहिद चला रहा है, अल्लाह सुबहानहू सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है, अर्श से फर्श तक, मशरिक से मगरिब तक, और इनसे वरा जो हमारी अक्लों में भी नहीं आ सकता वो सारे का सारा निज़ाम खुदा की तख्लीक है, खुदा की मिल्क है। तो इस पर उनको ताज्जुब हुआ कि क्या इसने बहुत सारे खुदाओं को एक खुदा बना दिया कि एक ही खुदा सारे सारी चीज़ें चला रहा है। कहने लगे इन हादा ला शैउन उजाब, बेशक ये ज़रूर बड़ी अजीब बात है, ये ज़रूर बड़ी अजीब बात है। तो ये उनका तर्ज़ अमल था जो तौहीद का पैगाम सुनने के बाद था। अब उसके बाद अल्लाह ताला एक और बात को इरशाद फरमाता है कि काफिरों के कुछ सरदार अबू तालिब के पास आए नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करने के लिए कि आप अपने भतीजे को ये तौहीद की दावत देने से इसे रोकें और ये बाज आ जाए तौहीद का पैगाम देने से और हमारे खुदाओं को झूठा कहने से और उनको बातिल करार देने से। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, बातें की, वापस गए, तो अब उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वन फलकल मलाउ मिनहुम अनिमशु वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन हादा लशैउन युराद मा समिअना बिहादा फिल मिल्लतिल आखिरह इन हादा इल्ला इख्तिलाक। और उनमें से जो सरदार थे, काफिरों में से जो सरदार थे, वो ये कहते हुए चल पड़े कि ऐ लोगों तुम भी चले जाओ और अपने माबूदों पर डटे रहो, बेशक इस बात में इसकी कोई गरज है, तौहीद की बात करने में इसकी यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई जाती गरज है। हमने ये बात पिछले दीन में भी नहीं सुनी, ये सिर्फ खुद बनाई हुई झूठी बात है। माअज़ल्लाह, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको तौहीद की बात कही तो अब बजाय इसके कि उस पैगाम की हक्कानियत और सदाकत पर गौर करते, जैसा कि तरीका भी यही होता है कि अगर एक साहिब किरदार आदमी कोई बात करता है तो उसकी बात की सदाकत पर, हक्कानियत पर और दुरुस्त होने पर गौर किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके सरदारों ने क्या कहा कि जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, अबू तालिब की मजलिस के अंदर बैठे, जब बातचीत की तो कहने लगे, अपने लोगों से कहने लगे चलो चलो और अपने झूठे खुदाओं के ऊपर डटे रहो, खुद भी चल पड़े और अपने लोगों को भी कहने लगे चलो यहां से, यहां आने का कोई फायदा नहीं है, अपने माबूदों पे डटे रहो। ये जो तौहीद की बातें कर रहा है माअदल्लाह, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद की बातें कर रहे हैं, इसमें इनकी कोई गरज है। इन हाज़ा शैउ युराद, ये कोई मकसूद है, कोई गरज है, कोई पैसे लेना मकसूद है या कोई सरदार बनना मकसूद है, इस तरह की इनकी कोई गरज है। और जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि एक ही खुदा है और मरने के बाद उठाया जाएगा, तो ऐसी बात हमने किसी पिछले दिन के अंदर भी नहीं सुनी। तो ये इनका ये कॉल था जो अव्वल ता आखिर जो इनकी बात थी, काफिरों की बात थी, अव्वल ता आखिर बातें। पहली बात तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहना कि इनकी कोई गरज है, ये अपने इस दावत तौहीद से, दावत रिसालत से ये कोई मकसद हासिल करना चाहते। अगर मकसद हासिल करना होता तो काफिरों ने तो अबू तालिब के पास आकर और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आकर कई मरतबा आपको ऑफर की थी, पेशकश की थी कि अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो हम आपको सरदार बना लेते, अगर आप किसी औरत से शादी करना चाहते हैं तो हम किसी औरत से शादी करा देते, अगर आपको पैसे चाहिए हम आपको पैसे दे देते, लेकिन ये तौहीद का पैगाम ना फैलाएं, ये हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनके इस पैगाम को झुटला दिया था और उनकी इस दावत को मुस्तरद कर दिया था, उनकी इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था कि मेरे एक हाथ पे सूरज या दूसरे हाथ पे चांद भी रख दें तब भी मैं इस दावत से बाज नहीं आऊंगा। तो अब ये कैसे कह रहे हैं कि नबी की कोई गरज थी, इनका कोई जाती मकसद है, मफाद है जिसकी खातिर ये तौहीद के पैगाम दे रहे हैं? तो ये बात उनकी बातिल थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की को गरज। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमने पिछले दिनों के अंदर भी ऐसी बात नहीं सुनी कि तौहीद की बात, वो इन्होंने किस एतबार से कि वो इस एतबार से कि ईसाई भी चूंकि तीन खुदा तो मानते थे, अकानीम सलासा जिसे वो कहते हैं, ट्रिनिटी का अकीदा भी जिसे कहा जाता है, तो एक जो पिछला दीन है यानी ईसाइत का दीन है वो भी तीन खुदा मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुदा मानने की बात कर रहे हैं। तो ये अपनी जहालत से ये समझे कि तौहीद तो पिछले मजहबों का भी, पिछले दीनों के अंदर भी नहीं थी, हालांकि उनको ये पता नहीं था कि उस वक्त भी ईसाइयों में वो लोग मौजूद थे कि जो अकीदा तौहीद को मानने वाले थे और ये तीन खुदाओं की बात तो वैसे ही ईसाइत की बिगड़ी हुई सूरत थी। तो इस एतबार से उनका मा समिना बिहाजा फिल मिल्लत आखिरा, जो पिछला दीन है ईसाइत जो आखिरी दीन है उसके अंदर भी हमने ऐसी बात नहीं सुनी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका रद्द किया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिरों ने एक और बात कही, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया और उसका फिर उसका जवाब भी दिया। इरशाद फरमाया, अऊज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूकू अज़ाब, क्या हमारे दरमियान इन पर कुरान उतारा गया, काफिर कह रहे क्या हमारे दरमियान इन पर कुरान उतारा गया। अब अल्लाह ताला फरमाता है बल्कि वो लोग मेरी किताब के बारे में शक में हैं, बल्कि अभी उन्होंने मेरा अजाब नहीं चखा। काफिरों की बात यह थी कि हमारे दरमियान अगर खुदा ने किसी को नबी बनाना ही था, या तो कोई बहुत पैसे वाला आदमी होता कि लोग उसकी बात तो सुनते, या कोई कौम का सरदार होता कि सरदार है उसके पीछे जमईयत है, एक मजमा है उसके पीछे, लोग हैं, कौम है, اللہ تعالیٰ اسے بناتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مالداروں میں شمار ہوتے تھے نہ ہی یہ سرداروں میں شمار ہوتے تھے. تو ہمارے درمیان قرآن ان پر نازل کیا گیا, یہ ان کی جہالت کہ شریعت کے نزول یا نبی کے لیے انہوں نے سمجھا کہ کوئی سردار نبی بنتا ہے یا کوئی امیر آدمی نبی بنتا ہے. حالانکہ سرداری کا یا امیری کا نبوت سے کیا تعلق؟ نبوت خدا کا وہ خاص عطیہ ہے جو اپنے فضل خاص سے وہ کسی کو عطا فرماتا ہے, جو آخری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت دی تو اس میں سرداری یا اس کے اندر مال کی تو جو ہے کوئی شرط ہی نہیں. اب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ ان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے بارے میں شک میں, یہ میرے قرآن کے بارے میں شک میں. اور پھر مزید فرمایا بلکہ اصل ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا, ورنہ یہ ان کا سارا حسد انانیت تکبر مخالفت سب نکل جاتی. تو یہ ایک قسم کا ان کو انذار بھی ہے, ان کو ڈر سنانا بھی ہے کہ میرے عذاب کا مزہ چکھو گے تو پھر یہ سب بھول جاؤ گے کہ سردار کو کیوں نہیں نبی بنایا تھا اور پیسے والے کو کیوں نہیں نبی بنایا تھا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی نبوت کے معاملے کے اعتبار سے ارشاد فرماتا ہے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے والے, تو یہ اس بات پر غور کریں کہ نبوت کا عطا کرنا یہ نبوت رحمت خداوندی ہے, ایک خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جب رحمت الہی کے خزانے اللہ عز و جل کے پاس ہیں تو نبوت عطا کرنا بھی اسی کا کام ہے, کسی کو نبی کے طور پہ بھیجنا بھی اسی کا کام ہے. تو کیا ان کافروں کے پاس نبوت کے خزانے ہیں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو نبوت ملنی چاہیے تھی اور کس کو نہیں ملنی چاہیے تھی؟ تو فرمایا کہ کیا ان کے پاس, ان کافروں کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں, جو عزت والا ہے جو بڑا عطا کرنے والا ہے اس کی رحمت کے خزانے کیا ان کے پاس ہے کہ جو یہ فیصلہ کریں گے کہ سردار کو کیوں نہیں نبی بنایا؟ اگر ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا تو کسی سردار کو نبی بناتے یا کسی پیسے والے کو بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو رحمت الہی کا ایک اخص الخاص معاملہ ہے, اخص الخواص معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت عطا کرنے کا سلسلہ ختم ہو چکا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب, یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے, پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں, رسیوں کے ذریعے آسمانوں پہ چڑھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو باتیں ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کافروں کے پاس ہوں تو لہذا اس میں سے نبوت بھی جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں, لیکن ایسا معاملہ ہے نہیں, رحمت کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. دوسری بات یہ کہ یا ان کافروں کے پاس آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کی سلطنت حکومت ان کے پاس ہو, تو جب اتنا کچھ ہوگا تو اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر ان کو چاہیے کہ جناب یہ رسیاں لگا کے آسمان پہ چڑھ جائیں اور آسمان سے اپنی مرضی کے مطابق احکام نازل کریں. لیکن ایسا بھی نہ یہ آسمان و زمین کے مالک, نہ اس کے آسمان و زمین کے درمیان کے مالک, نہ یہ رسیاں لگا کے آسمان پہ چڑھ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی کے احکام جاری کر سکتے ہیں. تو جب کسی معاملے میں ان کا اختیار ہے ہی نہیں تو پھر یہ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا انکار کس بنیاد پہ کرتے ہیں جب ان کا اختیار ہی نہیں؟ ان کا اختیار صرف یہ ہے کہ مانیں, نہ ماننا بھی اختیار میں ہے, لیکن جو ان کے لیے آپشن ہے جو قابل قبول و نجات والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مانیں. نبوت دینے کا ان کو اختیار نہیں ہے, نبوت ماننے کا ان کو اختیار ہے. لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں, اس کے اوپر یہ کلام نہیں کر سکتے کسی بھی اعتبار سے کیونکہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے اس معاملے کے اوپر. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے جسے یہاں شکست دے دی جائے گی۔ فرمایا یہ اہل مکہ ہیں کیا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو لشکر ہیں، گروہ ہیں، ان میں چھوٹا سا گروہ ہے، ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اور ان قریب شکست فاش سے دوچار کیا جائے گا، جیسے بدر کے اندر ہوا، جیسے فتح مکہ کے اندر جو ہے وہ اسلام کا پرچم بلند ہو گیا اور ان سب کو جو ہے وہ سوائے تسلیم کے کوئی چارہ نہ رہا۔ تو فرمائے معمولی سا لشکر ہے، اب یہ چونکہ معمولی سا لشکر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو شکست کھائے گا ہی کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اب بیان فرماتا ہے اگلی آیات کے اندر کہ ان سے پہلے تو بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے قوت والے، مال والے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا اس پہ غور کر لیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں، اور ثمود اور لوط کی قوم اور ایکا نامی جنگل والے بھی جھٹلا چکے ہیں، یہی گروہ ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے نام لے کر ان کو بتا دیا، قوم نوح بہت بڑی تھی، قوم عاد ان سے بڑی قوم تھی، اور فرعون میخوں والا، میخوں والا فرعون اس لیے کہا کہ فرعون جس سے ناراض ہوتا اس کو اس کے ہاتھ پاؤں پہ میخیں گاڑ دیتا، ہاتھ پاؤں پہ میخیں گاڑ کے اسے جو ہے وہ دیوار سے یا درخت کے ساتھ اسے کر دیتا، یا اسے زمین کے اوپر لٹا کے ہاتھ پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دیتا، تو بڑا شدید قسم کا عذاب تھا۔ تو فرمایا میخوں والا فرعون اور ثمود اور قوم لوط اور اصحاب الایکا جنگل والے، تو یہ جتنے قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ گروہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس میں ان میں سے جس نے بھی خدا کے رسولوں کو جھٹلایا، سب نے جھٹلایا، ساری قوموں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو فرمایا فحق عقاب، تو میرا عذاب لازم ہو گیا اور یہ ہلاک کر دی۔ چنانچہ قوم نوح، قوم عاد، فرعون، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکا، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ہلاک کر دیے گئے۔ ایکا جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے، اسے اصحاب الایکا جنگل والے، بن والے، یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اور یہ ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ فرمایا جیسے پہلے لوگ عذاب سے ہلاک ہوئے، تو یہ جو اہل مکہ ہیں یہ بھی ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ چیخ وہ ہے جو نفخہ اولا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور کے اندر پھونک ماریں گے، جس سے شدید ترین چیخ کی آواز آئے گی، جس سے سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ فرمایا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس چیخ کو کوئی پھیرنے والا نہیں، یعنی اس نے آنا ہی آنا ہے، اس عذاب نے آنا ہی آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کافروں کی ایک اور جہالت کا تذکرہ فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے۔ انہوں نے کہا، کافروں نے کہا ہمارا حصہ یوم الحساب، قیامت کے دن سے پہلے ہی ہمیں دے دے، جلد دے دے۔ کیا مطلب؟ نضر بن حارث نامی ایک کافر تھا وہ، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی، کیونکہ یہاں پر ابھی وہ قالو جمع کے سیگے کے اعتبار سے فرمایا گیا، یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو ہمارے اوپر عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، خدا کا عذاب ہوگا، تو وہ قیامت کے دن سے پہلے ہمیں دنیا کے اندر ہی ہمارے عذاب کا حصہ دے دو، جو ہمارے کھاتے میں، ہمارے حصے میں عذاب ہے وہ ہمیں قیامت سے پہلے دنیا کے اندر ہی دے دے۔ اب یہ جاہلانہ جرت کی انتہا تھی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے عذاب کا حصہ دنیا کے اندر دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ بات تو ذکر فرما دی، لیکن اس کا जवाब नहीं दिया, दूसरी बहुत सारी जगहों पर इसका जवाब मौजूद है। यहाँ उनकी सिर्फ इस हमाकत और जहालत का तस्किरा है कि किस तरह की जो है वो जाहिलाना जुरत का मुजाहरा कर रहे हैं और किस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो अब ये जो कह रहे हैं कि हमें दुनिया में पहले दे दे तो इसका इस दुनिया के अंदर अजाब आएगा, तो उसके लिए फिर पहली आयतें पढ़ लें कि फिरौन के साथ क्या हुआ, कौम नू के साथ, कौम समूद, कौम आद के साथ क्या हुआ, असहाबुल एका के साथ क्या हुआ, कौम लूत के साथ क्या हुआ। तो उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि जो यौमुल हिसाब से पहले दुनिया के अंदर तुम अपने अजाब का हिस्सा चाहते हो उसका नतीजा क्या होगा। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही प्यारे बरगुजीदा रसूल हैं। ये वो हैं जिन पर अल्लाह ताला ने किताब नाज़िल फरमाई, चार मशहूर बड़ी आसमानी किताबें, बकिया सहीफे हैं छोटी किताबें, जो चार बड़ी किताबें हैं तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान। उनमें से जो ज़बूर शरीफ है वो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल फरमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े बरगुजीदा पैगंबर हैं और बड़े फ़ज़ाइल के हामिल हैं। अल्लाह ताला ने इनको किताबी अता फरमाई और इनको बादशाहत भी अता फरमाई, इनको अल्लाह ताला ने बादशाहत भी अता फरमाई। इनके इख्तियारात थे, इनकी बादशाहत थी, इनकी रियाया थी और इनके उम्मती भी थे, इनको किताबी अता की गई। तो बड़े अल्लाह ताला के बरगुजीदा पैगंबर और ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं। तो आप भी नबी, आपके फरजंदे अर्जुमन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के नबी। इरशाद होता है, इसबिर अला मा यकूलूना वज़कुर अब्दना दाऊद अल ऐद इन्नहू अव्वाब। तुम इनकी बातों पर सब्र करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया गया। वो जो काफिर कहते हैं ना दुनिया में हमें पहले ही अजाब दे दिया जाए, तो अल्लाह ताला उस पर फरमाता है कि तुम इनकी बातों पर सब्र करो और हमारे नेमतों वाले बंदे दाऊद को याद करो, बेशक वो बड़ा रुजू करने वाला है। दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े रुजू करने वाले हैं और दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि हमारे नेमतों वाले बंदे दाऊद को याद करो। नेमतों वाले बंदे का क्यों जिक्र किया गया? नेमतों वाले इसलिए कि अल्लाह ताला की उन पर बहुत सारी नेमतें थी। जैसे मैंने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें किताबी अता फरमाई, अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत भी अता फरमाई, अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत फैसला, फसल अल खिताब, कुव्वत फैसला भी उनको अता फरमाई। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने उनको और बहुत सारे मोजज़ात अता फरमाए, वो मोजज़ात का आगे तस्किरा आएगा। अल्लाह ताला ने मोजज़ात भी अता फरमाए, फिर अल्लाह ताला ने उनको अपनी इबादत की खास तौफीक अता फरमाई, खास तौफीक अता फरमाई। तो दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े प्यारे बंदे, तो इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बड़ा रुजू करने वाला है। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ बड़े रुजू करने वाले हैं कि आप इबादत गुजार बंदे थे और अल्लाह ताला ने आपको इबादत पर कुव्वत अता फरमाई थी। बाज मुफस्सिरीन ने ये जो अल्फाज हैं, वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो, ज़ल ऐद कुव्वत वाले, मैंने तर्जमा किया था नेमतों वाले, तो ये एक उसका माना है। दूसरा माना है कुव्वत वाले, तो कुव्वत वाले से मुराद ये है कि आप इबादत में बहुत कुव्वत वाले थे, कि कसरत से इबादत करते थे और बड़े ज़ौक व शौक से इबादत करते थे और थकते नहीं थे। तो आपकी इबादत का तज़किरा अहादीस के अंदर मौजूद है, वो कुरान के अंदर भी है, कुरान पाक के अंदर भी है और अहादीस के अंदर भी है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाऊद अलैहिस्सलाम के नमाज के तरीके को, रात जागकर नमाज पढ़ने के तरीके को, शब्बेदारी को, और आपके रोज़ा रखने के तरीके को बेहतरीन तरीका करार दिया कि बेहतरीन तरीका था। वो क्या था? हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े सब रोज़ों से ज़्यादा पसंद है। नफली रोज़े, फ़र्ज़ तो रमज़ान के, रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ रोज़े नफली से अफजल ही होते हैं और वो तो पूरा महीना ही रखने हैं, या नफली रोज़ों की बात है। फरमाए अल्लाह ताला को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े सब रोज़ों से ज़्यादा पसंद हैं। और उनका तरीका ये था कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन छोड़ देते थे। फिर फरमाया, और अल्लाह ताला को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज सब नमाजों से ज़्यादा पसंद, नफली नमाज, फ़र्ज़ तो पांच नमाजें पढ़नी पढ़नी, नफली नमाज। वो क्या? फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात तक सोते, तिहाई रात इबादत करते, फिर बाकी छठा हिस्सा सोते थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के ये इबादत का तरीका था कि आप एक दिन रोजा रखते और एक दिन आप छोड़ देते, एक दिन रोजा रखते एक दिन छोड़ देते। और नमाज के अंदर आपका तरीका मुबारक ये था कि आधी रात आप सोते, फिर उसके बाद उठते और एक तिहाई रात इबादत करते, फिर जो बकिया रात का हिस्सा है वो आप दोबारा आराम फरमाते। जैसे मिसाल के तौर पे छः घंटे की रात है तो 3 घंटे आप आराम फरमाते, उसके बाद उठते 2 घंटे आप इबादत करते, 5 हो गए। अब रात का छठा हिस्सा 1 घंटा बना तो रात के आखिरी हिस्से में आप दोबारा सो जाते। तो ये आपका तरीका मुबारक था, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे बड़ा पसंद फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ तरीके नमाज के लिए, रोजे के लिए इख्तियार फरमाए। देखिए, आप भी कसरत से नमाज पढ़ने वाले, कसरत से नफल पढ़ने वाले, कसरत से इबादत करने वाले थे। ये अगर आपने मुताला करना हो तो सिरातुल जिनान में इसी आयत के तहत ये जिल्द नंबर 8 है और पेज नंबर जो है वो 376। तो इस पेज से जो इबादत का बयान है वो बड़ा खूबसूरत मौजूद है सिरातुल जिनान 8वीं जिल्द के अंदर। पढ़ना चाहें तो यहाँ से मुताला कर लीजिएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मजीद फजाइल बयान फरमाता है। इरशाद फरमाया, इन्ना सख़रनल जिबाला माहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक व पैर महशूरा कुल्लुल्लहू अव्वाब व शददना मुल्कहू व आतैनाहुल हिकमता व फसलल खिताब। बेशक हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को ताबे कर दिया कि वो शाम और सूरज के चमकते वक्त तस्बीह करें, और जमा किए हुए परिंदे सब उसके फरमा बरदार थे, और हमने दाऊद की सल्तनत को मजबूत किया और इसे हिकमत और हक को बातिल में फ़र्क कर देने वाला इल्म अता फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के मुजज़ात और फजाइल का बयान किया। पहली फजीलत बयान फरमाई कि हमने पहाड़ों को दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला का जिक्र करते तो पहाड़ भी आपके साथ अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला की कुदरतें और अल्लाह ताला के प्यारों की शानें। अल्लाह ताला अपने प्यारों को कैसे मरतबे, कैसी शानें अता फरमाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत थी। तो जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करते तो पहाड़ आपके साथ अल्लाह ताला का जिक्र करते, पहाड़ आपके साथ तस्बीह पढ़ते। अच्छा, पहाड़ भी और इसी तरह परिंदे भी। फरमाया वत्तैरा महशूरा, और जमा किए हुए परिंदे भी। फरमाया कुल्लुल्लहु अव्वाब, सब दाऊद अलैहिस्सलाम के फरमा बरदार थे, सब दाऊद अलैहिस्सलाम के फरमा बरदार। पहाड़ भी आपके ताबे थे, परिंदे भी आपके ताबे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी और क्या मंजर होगा कि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं, साथ में पहाड़ तस्बीह कर रहे हैं, साथ में परिंदे तस्बीह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला के प्यारों की शान है। और फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ तस्बीह करते शाम को और सूरज के चमकते वक्त। सूरज के चमकते वक्त जिसे हम इशराक कहते हैं, जैसे ना इशराक और चाश्त का वक्त, इशराक सूरज निकलने के बाद का वक्त। तो हमारी शरीयत के अंदर है कि सूरज निकलने के बाद, सुबह सूरज निकलने के बाद 20 मिनट वक्त मकरूह है, उसके बाद इशराक का वक्त शुरू हो जाता है, नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाता है, चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। इशराक तो खैर वो पर्टिकुलर टाइम है जिसे इशराक कहा जा रहा है, लेकिन उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है वो इशराक के वक्त की नमाज, और इशराक को चाश्त की नमाज की बड़ी फजीलत है। इशराक सूरज निकलने के बाद, और चाश्त का असल तो यह है कि जब दिन बहुत चढ़ जाए, काफी सारा दिन चढ़ जाए उस वक्त, लेकिन वैसे उसका वक्त जो है वो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद के बाद से शुरू है, सूरज निकलने के बाद 20 मिनट गुजार के शुरू हो जाता है। तो इशराक को चाश्त इकट्ठी भी पढ़नी चाहे तो पढ़ सकते हैं, और इन नमाजों की बड़ी फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस नंबर तिर्मिज़ी शरीफ की है, फरमाया जिसने फज्र की नमाज जमात के साथ अदा की फिर वो सूरज तुलू होने तक बैठ कर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा, फिर उसने 2 रकअत नमाज पढ़ी, तो उसे हज और उमरे का पूरा पूरा सवा मिलेगा। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम नमाज है नमाज इशराक के फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें, फिर अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, सूरज तुलू होने के बाद वक्त मकरू गुजारें और उसके बाद दो रकात नमाज पढ़ लें, अल्लाह ताला हज और उम्रे का पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा। तो ये बड़ी प्यारी नमाज है, बड़ी फजीलत वाली नमाज है, हो सके तो ये नमाज ज़रूर अदा किया करें। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि फजर की नमाज जमात के साथ ही पढ़ी हो तो ही इशराक पढ़ सकते हैं, ना ये ज़रूरी है कि फजर के बाद तुलुए आफ्ताब तक अल्लाह ताला का जिक्र करके ही पढ़ सकते हैं। बिलफर्ज़ अगर फजर के बाद कोई सो भी गया तब भी ये नमाज पढ़ सकता है, या बिलफर्ज़ जैसे किसी की फजर कज़ा ही हो गई कसदन या बिला कसदन हराम है, लेकिन किसी की नमाज निकल गई, अब वो सूरह तुलू होने के बाद पहले अपने फजर की नमाज की कज़ा जो है वो पढ़े कि वो ज़रूरी है, और उसके बाद इशराक की नमाज़ पढ़ लें। तो इशराक की नमाज पढ़ना चाहिए, अपनी एक आदत बना लें। और चाश्त की नमाज सुबहानल्लाह उसकी फजीलत सुनिए, ये भी तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने चाश्त की नमाज की 12 रकअतें पढ़ी, चाश्त की नमाज की 12 रकअतें पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बना देगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी नमाज, कितनी अजीम फजीलत है कि अल्लाह ताला उसके लिए सोने का महल जन्नत के अंदर बना देगा जो चाश्त की 12 रकअतें पढ़ेगा। लेकिन अगर कोई दो पढ़ना चाहे तब भी पढ़ सकता है, यानी चाश्त की कम से कम 2 रकअतें हैं, ज्यादा से ज्यादा हदीस के अंदर 12 बयान की गई, तो जो 12 पढ़ सके तो बड़ी फजीलत, अल्लाह ताला सोने का महल उसके लिए बनाएगा। फिर एक और बात अर्ज करूं कि चाश्त की नमाज रिस्क में बरकत का बहुत बड़ा जरिया है, और चाश्त की नमाज का मतलब 12 रकतें नहीं, 2 रकत भी पढ़ सकते हैं। बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि हमने रिस्क को चाश्त की नमाज में पाया, तो चाश्त की नमाज पढ़े, अल्लाह ताला रिस्क में भी बरकत देगा और अल्लाह ताला जन्नत के अंदर भी घर अता फरमाएगा। तो सवाब का सवाब है, दुनिया का रिस्क अलहदा मिल जाता। तो हो सके तो जैसे 10, 10:30 बजे 11 बजे आराम से चाश्त की नमाज पढ़ ली, 2 रकत है, वजू करे 2 रकत नमाज पढ़ लें, रिस्क के अंदर भी बरकत होगी और अल्लाह ताला सवाब भी अता फरमा देगा। परिंदों का फरमाया कि जमा किए हुए परिंदे, तो जमा किए हुए परिंदे के परिंदे भी जमा होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह किया करते थे। ये पहाड़ों और परिंदों की जो तस्खीर है दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, इसका तस्किरा सूरह अंबिया में भी है और सूरह सबा के अंदर भी, अभी चंद सिलसिले पहले हम इसका तस्किरा कर चुके हैं। अगली फजीलत जो दाऊद अलैहिस्सलाम की बयान फरमाएगी कि हमने उसकी सल्तनत को मजबूत किया, तो दाऊद अलैहिस्सलाम की मजबूत सल्तनत थी जिस पर कोई हमला करने की जुरत ना कर सका, मजबूत सल्तनत, और उसके साथ अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और हक़ व बातिल में फ़र्क कर देने वाला इल्म अता फरमाया। तो अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई, हिकमत से मुराद नबुवत, कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुवत अता फरमाई, और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह फरमाया कि हिकमत से मुराद अदल करना, कि आपको अल्लाह ताला ने अदल करने की तौफीक अता फरमाई, और बाद ने कहा कि किताबुल्लाह का इल्म, बाद ने कहा कि इससे कुछ और मुराद है, और वो जो है फसल अल खिताब कौल फैसल, इससे मुराद कज़ा का इल्म, यानी आप अलैहि सलातो वसलाम जो लोगों में उनके मामलात के फैसले करते थे वो दुरुस्त हुआ करते थे, तो अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत फैसला भी अता फरमाई थी, दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत भी अता फरमाई थी। तो ये दाऊद अलैहि सलातो वसलाम की शान है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाई। इससे ये भी पता चला कि अल्लाह ताला के नबियों का जिक्र करना अल्लाह ताला को कितना प्यारा है, और उनकी शान बयान करना खुदा की सुन्नत है, और उनकी शान बयान करना कुरान का तरीका है। तो जब दाऊद अलैहिस्सलाम की शानें बयान हो रही हैं और उनकी अजमतों का बयान है और उनके मोजज़ात का बयान है और उनकी इबादतों का बयान है, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी शान बयान करना, उनकी इबादतों के अहवाल बयान करना, उनके तरीकों का बयान करना, उनके मोजज़ात और उनके फजाइल का बयान करना, ये भी अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है। इसलिए कोशिश करें कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी मुताला किया करें, ताकि हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, आपके इबादत के तरीके, आपका ज़ौक़ इबादत और आपके दीगर मामलात, आपकी सुन्नतों का हमें पता चले। तो सीरत मुस्तफ़ा नाम की किताब अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना से छपी मौजूद है, इसी तरह सीरत रसूल अरबी ये किताब भी छपी मौजूद है, इस किताब का मुताला करें और मदनी चैनल भी देखते रहें, ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नतों, इबादतों, आपके फजाइल, आपके मोजज़ात, आपकी शानों اور آپ کی تعلیمات کے بیان کا ہی ایک ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.